ओम शांति। आपकी अभी संध्या काल की क्लास का विषय है बाप समान संपन्न और बाप समान संपन्न और संपूर्ण। हम सबके बीच में ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी आदरणीय गीता बहन जी उपस्थित हैं। हम आपका पंजाब की योग भट्टी में हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी एक ताली से स्वागत करेंगे। सहज सरल निर्माण कर्मठ ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व को रखते हुए सदा ये भी आपके जीवन से व्यक्तित्व से अनुभव किया है कि हर परिस्थिति में अपनी स्वस्थिति को बनाए रखना, कोई भी परिस्थिति का असर चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, जैसे बाबा भी कहते हैं, लेकिन स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना ये आपका खुद का नेचुरल नेचर है, आपकी नेचुरल पर्सनालिटी है। आप वर्तमान समय शांतिवन में रहते हैं और हमारे इस इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स में आप सीनियर फैकल्टी मेंबर के रूप में कार्यरत हैं। हमारे तीनों ही कैंपसेस में अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं, चाहे वो विंग्स के कार्यक्रम हो, चाहे वो योग की भट्टियों के कार्यक्रम हो, चाहे वो शिविरों के कार्यक्रम हो, चाहे वो बाप दादा मिलन का समय हो और उसके क्लासेस हो। इन सभी प्रोग्राम्स में नियमित पूरा ही वर्ष लगभग क्यों ना कह लें कि आप अपनी सेवाएं योग की गहराइयों के विषय, ज्ञान की गहराइयों के विषय वर्कशॉप्स के द्वारा आप अपनी सेवाएं अपने चिंतन के द्वारा अनेक आत्माओं को आप लाभान्वित करते रहते हैं। और मैं ऐसा समझती हूँ कि ज्ञान की गहराई के विषयों को मनन कर उन्हें कन्विंस करना, मनुष्यों को सामने बीकेस को या नॉन बीकेस को कन्विंस करना, उसमें आपको एक्सपर्टीज है। वैसे आप 1969 में 14 वर्ष की आयु में बाबा के संपर्क में आए और उस समय आप स्कूल में पढ़ते थे, तो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के रूप में आपका एक व्यक्तित्व था स्कूल में और परिवार में। लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिला तो आपको ये ज्ञान बहुत आकर्षित किया इस ज्ञान ने, और बोर्ड की साउथ गुजरात बोर्ड का एग्जाम देने के पश्चात आपने अपना जीवन 1972 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवाओं के लिए समर्पित किया। आपने बोर्ड परीक्षा में आप फर्स्ट रैंक से उत्तीर्ण हुए, साउथ गुजरात की जो बोर्ड परीक्षा थी, और 72 के पश्चात आप सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद में सेवाएं दी और तत्पश्चात भावनगर में एज ए सब जोन इंचार्ज 14 वर्षों तक आप सेवा देते रहे। और 1993 में जब यहाँ ज्ञान सरोवर अकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड बना तब यहाँ आप स्थानांतरित हुए। यहाँ पर आवास निवास हो, चाहे रिसेप्शन हो, चाहे अकोमोडेशन हो, चाहे सभी क्लासेस इत्यादि हो, उन सभी सेवाओं को देते हुए वर्तमान समय आप शांतिवन में स्थित रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बिजनेस इंडस्ट्री विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो मैं निवेदन करती हूं दीदी से कि आप अपने विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी गीता जी।
ओम शांति। वैसे अमृतसर का आना पंजाब जोन का आना ही कहा जाएगा, क्योंकि पूरे पंजाब जोन की सेवा की नींव तो अमृतसर ही रहा है शुरू से। हमारी प्यारी चंद्रमणि दादी जी वहां से ही पूरे जोन का संचालन करती थी, तो जरूर आप सबका भी साथ सहयोग रहा है। तब तो दादी पूरे जोन की सेवा कर पाई। हमें भी सौभाग्य मिला 2 साल दादी जी के साथ ज्ञान सरोवर में रहने का। शुरू में दादी जी निमित्त बनकर आए 95, 96, 97 शिवरात्रि झंडारोहण तक दादी के साथ रहे, और हमारे समर्पित जीवन की 72 में हम समर्पित हुए, और उसी साल शायद या 73 पंजाब में सबसे पहला सेमिनार हुआ। उस समय यज्ञ में सेमिनार नहीं होते थे, हम बिल्कुल नए थे, और जो अपने बॉम्बे के वरिष्ठ भ्राता रमेश भाई जी, उषा बहन जी, उनके साथ हम पहली बार अमृतसर आए थे दादी जी के पास। तो ऐसी दादी जी की पालना और तपस्या, हिम्मत, उमंग, उत्साह, जिस सेंटर को सालों तक मिला है, ऐसे सौभाग्यशाली आप भाई बहने आए हैं, आपका स्वागत है। मधुबन, इस बार आपका आना स्वयं के लिए हुआ है। वैसे तो सिर्फ चार धाम यात्रा के हिसाब से आते और चले जाते है ना? कोई सेवा में आए होंगे या पुराने होंगे, उनको रहने का मौका मिला होगा, पर जो फर्स्ट टाइम यहाँ रहे पांडव भवन, वो हाथ ऊपर करे। काफी भाई बहने, मधुबन तपोभूमि, प्यारे बाप दादा और दादियों ने जहां तप किया, ऐसी शक्तिशाली वरदानी भूमि में आपको तपस्या का मौका मिला है। यहां के वातावरण में नेचुरल योगी बनने का वरदान है। हमें मधुबन में 24 सालों से रहने का मौका मिला है। प्यारे बाबा ने यज्ञ ही, और हमारी दादियों ने यज्ञ ही ऐसा सेट किया है कि सेवा करो और न्यारे हो जाओ। सहज योगी हम बन सकते हैं। देहत का यज्ञ इस भूमि को कहा जाता है, जहां से विश्व भर की आत्माओं की रूहानी पालना का कार्य चलता है। कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, आप सबको पता होगा, बाबा के होते भी कोई गेस्ट आकर पूछते थे भाई बहनों से ये सब कुछ किसका है, तो कहते थे बाबा का है। और बाबा से पूछते थे तो बाबा कहते थे बच्चों का है। जहां किसी का मालिकपन का भाव नहीं रहा, मेरेपन का भाव नहीं रहा, हमारा सबका ऐसा बेहद का भाव प्रारंभ से जहां रहा, वहां हमें भी अपने आप को बेहद में अनलिमिटेडनेस अनुभव करने का मौका मिलता है। आज भी बाबा ने कहा कि जो ऐसा फ्रॉक दिल, विशाल दिल, संपन्न आत्माएं हैं, वे ही वरदानी बन सकते हैं। और प्यारे बाबा भी हमें जो पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य भी संगम युग की भाषा में कहें तो बाप समान बनना। लोगों को बताना है तो हम कहेंगे कि मनुष्य से देवता बनना है। संपन्न और संपूर्ण बनना है। संपन्न माना भरपूर, फुलफिलमेंट। संपूर्ण बनना माना परफेक्ट। संपन्न बनने के बाद ही संपूर्ण बन सकते। और आज की मुरली में सुना है आप सबने, निमित टीचर्स बहनों से बात करते हुए बाबा ने बताया, बाप समान बनना है। तो बाबा ने कहा अपने हर संकल्प, बोल, कर्म, गुण को चेक करो कि वो बाबा जैसा है। और उसके लिए चाहिए कि बाबा को बाप दादा दोनों को हम जितना हो सके गहराई से पहले तो जाने, पहचाने, समझे। किसके जैसा बनना है तो पहले उसका ज्ञान चाहिए। बाबा कहते हैं कि स्थिति के हिसाब से शिव बाबा को फॉलो करना है और प्रैक्टिकल जीवन, कर्म, व्यवहार के हिसाब से ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। शिव बाबा ज्ञान है तो ब्रह्मा बाबा अनुभव है। प्रैक्टिकल उदाहरण है। शिव बाबा कौन है, क्या है, कैसा है, वो भी रोज ज्ञान मुरली में हम देखते हैं। विवेक के नेत्र से देखते हैं। इन आंखों से देखने का सौभाग्य इसमें होंगे ना कोई ना कोई, जिसको देखने का सौभाग्य मिला। हाथ ऊपर करें। एक आत्मा, दो आत्मा, ये भी। हम सभी बाबा की अव्यक्त रचना है। इन आंखों से देखने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन हमने विवेक की आंख से, ज्ञान नेत्र से और अव्यक्ति पार्ट में दादी गुलजार के चेहरे से बाप दादा को देखा है, देखा है, देखा है। ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा का बनकर क्या सोचा, क्या समझा, क्या बोला और क्या किया, वो ही मुरली में आता है। साकार और अव्यक्त, सत्य ज्ञान को प्राप्त करने वाली आत्मा, प्रैक्टिकल जीवन में, व्यावहारिक जीवन में, व्यक्तिगत दैनिक जीवन में कैसी होनी चाहिए, उनका उठना बैठना, बोलना, देखना, सोचना, खाना पीना, पहनना, वो साकार मुरली हमें सिखाती है, बताती है। और परमात्मा के सत्य ज्ञान, उनके याद के बल से हम आध्यात्मिक दृष्टि से कितनी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं, वो अव्यक्त मुरली में हम सीखते हैं। आध्यात्मिकता की, रूहानियत की कितनी ऊंचाई, सूक्ष्मता वो अव्यक्त मुरलियों में देखने को मिलता है, जानने को, समझने को मिलता है। माना हमारे सामने स्पष्ट है कि कलयुग अंतिम जन्म की पतित आत्मा सतयुगी नंबर वन जन्म की संपूर्ण पावन आत्मा कैसे बन सकती है, वो मुरलियां हमें बताते हैं। मतलब ज्ञान मिल चुका है हमें, जितना अध्ययन करते हैं वो विस्तार भी मिलता है, गहराई भी मिलती है। हम कब से आए वो प्रश्न नहीं है, क्योंकि हमारे सामने सारा खजाना है। हमारे सामने इस ड्रामा की नंबर वन संपूर्ण आत्मा कौन बनी? ब्रह्मा बाप। माना एक गृहस्थी आत्मा संपूर्ण बन सकती है, ये उदाहरण है। लाखों कुमार कुमारियां हैं हमारे सामने, दोनों एग्जाम्पल बाबा और मम्मा। गृहस्थी ये सोच नहीं सकते कि हम संपूर्ण कैसे बन सकते। ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल है। कोई बुजुर्ग ये सोच नहीं सकता कि इस आयु में कैसे बन सकते, बाबा ने बन के दिखाया। पता है ना सबको बाबा के जीवन कहानी। एक शाहूकार संपन्न कैसे बन सकता है, बाबा ने बन के दिखाए। युवा कैसे बन सकते हैं, साधारण परिवार के बैकग्राउंड से कैसे बन सकते हैं, एक स्त्री शरीरधारी आत्मा कैसे बन सकती है, मम्मा ने बन के दिखाया। तो सबसे पहले अगर ऐसे कोई विचार हमारी बुद्धि में है तो हम निकाल दें। समर्पित हो सकते हैं? नहीं। हर आत्मा बन सकती है, संसार की कोई भी परिस्थिति में रहने वाली हूं, जिस सिचुएशन में भगवान ने उनको अपना बनाया उसी से वो ऊपर उठ सकती है और संपूर्ण बन सकती है, है ना। ये दोनों एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। अब मुख्य बात, ज्ञान भी है उदाहरण भी है। बाबा ने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, है ना, प्रैक्टिकल हमारे सामने। बाबा मम्मा और उसके बाद दादियां उदाहरण है। हमें अब शांति से बैठकर अंतर्मुखी बनकर अपने आप से पूछना है मेरा विचार क्या है? मेरा विचार क्या है? मेरी इच्छा क्या है? जवाब लिखिए डायरी में, है ना, नोट पे। बाबा कहते हैं रोज मेरे सामने आकर बैठते हो तो अपने लक्ष्य को याद करो, बन वो ही सकता है जो खुद लक्ष्य बनाता है। बाबा कहते हैं, दादियां कहती हैं, मेरा विचार क्या है? बनना मुझे है तो फैसला भी मुझे करना, क्या जवाब है लिखिए। पढ़ाई तो बाबा संपूर्ण बनने की पढ़ा रहा है, समान बनने की पढ़ा रहा है ना, उसी लेवल से बाबा बात करते हैं हमसे। हमारे पीछे मेहनत करते हैं, मेरा लक्ष्य क्या है? माना सच में मुझे बनना है, मुझे अपने आप को रोज बाबा से कन्विंस करना है इस बात में। माँ बाप तो चाहते हैं बेटा डॉक्टर बने कि ये बने, बच्चे का अपना निर्णय क्या है? अगर उसका अपना ही निर्णय ये है कि ठीक है कंपाउंडर बन जाएंगे, हाँ नर्स बन जाएंगे, नहीं, क्योंकि जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो हमारी सारी शक्तियां अपने आप लक्ष्य की दिशा में कार्य करती है, फिर हम अपना समय मन बुद्धि जीवन धन जो भी स्थूल सूक्ष्म हमारी क्षमताएं हैं योग्यताएं हैं वो उस दिशा में हम लगाएंगे। कहते हैं ना, ठान लिया तो जीत है। वो निर्णय अपने हाथों से लिखो, अपनी डायरी में मेरा इस अलौकिक जीवन का लक्ष्य क्या है? अपने हाथ से हम लिखेंगे तो याद रहेगा। खुद बाबा से बात करिए, अपने भावों और शब्दों में लिखिए, एक दो वाक्य में। अब तक हम जितना बन पाए हैं, क्योंकि हम लगे तो हैं, इसी पुरुषार्थ में लगे हैं। आप कहेंगे बनना है तब तो हम आ रहे हैं, तभी तो और कोई लक्ष्य बनाया नहीं जीवन में। हमने दुनिया के लौकिक भौतिक सांसारिक कोई और क्षेत्र में बहुत कुछ अचीव करने का लक्ष्य नहीं बनाया। जब कोई पूछते हैं क्यों नहीं बनाया, तो हम कहते हैं हमें तो भगवान मिला, सत्य ज्ञान मिला, हम अब उसी दिशा में फोकस करेंगे। आज आत्मबल से दुनिया में अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ लोग सिद्ध करते हैं, सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। हमने वो कोई क्षेत्र नहीं चुना, हम कहते हमें बाबा मिला है, सत्य ज्ञान मिला है, हमें वो लक्ष्य मिला है। तो नेचुरली हमें देखना होगा कि हमने यहां कितना सिद्ध किया, वहां हमने नहीं किया, ये निर्णय हमारा राइट है। अरे स्वयं भगवान ने हमें सत्य बता दिया हर बात का। यहां हमने अब तक कितना अचीव किया, हमने त्याग किया, जो बाबा स्टेप्स बता रहे हैं ना, भी देह भान का त्याग किया, आत्मभान कितना अचीव किया, आत्मभिमानी हम कहां तक बने। हमने देह संबंध छोड़े, आप भी सिर्फ तोड़ निभा रहे हैं। बाबा ने सिखाया है ना जोड़ना है ना तोड़ना है, सिर्फ क्या करना है, तोड़ निभाना है, निमित्त मात्र। कितना भी हम उनके साथ दुनियादारी निभाते हैं, पर हमारा लक्ष्य धारणाएं दिनचर्या नियम उस प्रकार से हमने अपनाए हैं कि वो भी समझते हैं कि इनके रास्ते अलग हैं। भले ये निभा रहे हैं पर इनकी लगन अलग है, इनकी धारणाएं अलग हैं। उस हिसाब से हम कहेंगे कि हमने देह के संबंध छोड़े। हमने बाबा से सर्व संबंध कितने निभाए। हर क्षण, हर स्थान, हर बात, हर परिस्थिति, हर आवश्यकता, हर मुसीबत हमें सबसे पहले कौन याद आता है, चेक करना है, चेक करना है। सिर्फ कहने की बात नहीं कि बाबा याद आएंगे ना, पर वास्तव में कौन याद आता है। बाबा ने बीच में एक साकार मुरली में कहा था कि अंत में अपने आप बाबा याद आए, कोई कहेगा नहीं याद करो, उसके लिए मदद नहीं मांगनी है, मुझे अंत समय वो याद आए अपने आप, इतनी लगन मुझे बाबा से लगानी है। और हम हरेक जानते हैं कि अंत में वो ही याद आएगा जो जीवन भर हमने याद किया है। जो हमने नित्य याद किया है वो ही अंत में याद आएगा। तो जरूर हम सभी ने लक्ष्य बनाया है, उसके अनुरूप बैकग्राउंड भी हमने तैयार किया है। जो भी नियम मर्यादाएं, दिनचर्या इस ब्राह्मण जीवन की, जो आचार संहिता है, अनुशासन है, डिसिप्लिन है, वो हम पालन करते हैं, वरना हमने वो फाउंडेशन और बैकग्राउंड बनाया है। और हम बने भी हैं, हरेक को अपना अपना परसेंटेज समझ में आता है। बाबा कहते हैं ना कि स्टूडेंट को पूछने की दरकार नहीं टीचर को कि मैं पास होऊंगा या नहीं, स्टूडेंट खुद समझ सकता है। हम हरेक अपने आप को समझ सकते हैं कि अब तक हम कितने परसेंटेज में बने हैं, और जो कुछ बने हैं बाप समान, वो बनाने में प्यारे बाप दादा की पालना, दादियों की पालना, बड़ों की पालना, ईश्वरीय परिवार का संग, उससे हमें बहुत मदद मिली है, और इन सबकी मदद से हम इतने बने हैं। आप खुद अपनी परसेंटेज लिख सकते हैं। अब बाकी जो समय बचा है, कितना बचा है, हम कोई भी कह नहीं सकते। महापरिवर्तन का कितना समय बचा है वो अलग हिसाब है, स्व परिवर्तन का कितना समय बचा है वो हिसाब अलग है। दोनों को मिक्स नहीं करना है। हो सकता है मां परिवर्तन के 5 साल हो और मेरा 5 दिन भी ना हो, 5 मास भी ना हो, किसी को पता नहीं है। समय का सिग्नल सदा बाबा देते रहे हैं। है ना, बाबा इनडायरेक्ट वे से हमें सदा समय का सिग्नल देते रहे। अचानक शब्द कितनी बार बाबा ने हमें बताया है। और समय का सिग्नल जो बाबा देते हैं वो स्व परिवर्तन के लिए देते हैं। हम स्थापना के निमित्त आत्माएं हैं, हम विनाश के निमित्त नहीं हैं। इसलिए विनाश कब होगा ये हमारा सोचने का सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सोचने का सब्जेक्ट कौन सा है, हम कहां तक बने हैं। हम स्थापना के निमित्त आत्माएं हैं। और जिस स्थिति से, आध्यात्मिक स्थिति से हम संगम युग को एंड करेंगे, उसी स्थिति से हम सतयुग शुरू करेंगे। आई बात समझ में? हम जिस अवस्था से संगम को समाप्त करेंगे हम उसी स्थिति से सतयुग को आरंभ करेंगे। तो समय, लक्ष्य और मैं, उस हिसाब से मुझे अपना पुरुषार्थ करना है। घबराने की बात नहीं है कि कितना टाइम पुरुषार्थ में देना होगा, टाइम की बात नहीं है। बाबा के जो भी सच्चे पक्के बच्चे हैं वो कहीं भी अपना समय, शक्ति, धन बर्बाद नहीं करते हैं। है ना, जो निश्चयात्मक बुद्धि है उनका बचा शेष जो भी समय, धन, साधन, बुद्धि, वो बाबा के सेवा और पुरुषार्थ में ही हम लगाते हैं। तो और कोई समय तो है ही नहीं, जो है वो तो ऑलरेडी हम सेवा में लगा रहे हैं ना। कहीं इधर उधर हम वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। मोस्टली हम बाबा के बच्चे सिंसियर हैं। पर पुरुषार्थ को तीव्र करने की बात जो बाबा कहते हैं वो टाइम के हिसाब से कि भाई 2 घंटा करते हैं 4 घंटा करें वो बात नहीं है, क्वालिटी पुरुषार्थ की बात। पुरुषार्थ की क्वालिटी को श्रेष्ठ बनाना है, बाप समान बनाना। बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ की व्याख्या कही थी कि बाबा का कहना और बच्चों का करना। सुनना और स्वरूप बन जाना। बाबा जो हमें ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की बात करते हैं वो वही है बाप समान संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनना। और फरिश्ता बनना माना क्या करना, सिर्फ योग में फरिश्ता नहीं बनना है। हमें जैसे ब्राह्मण जीवन नित्य का है, फरिश्ता केवल स्थिति नहीं है, जीवन पद्धति है। फरिश्ता जीवन हमें बनाना है। फरिश्ता केवल स्थिति नहीं है जो योग के समय सिर्फ हम प्रैक्टिस करें, फरिश्ता लाइफस्टाइल हमें अपनाना है। शूद्र से ब्राह्मण बनने में क्लियर था कि जो असत्य है, अपवित्र है, असार है, अयथार्थ है, वो अब हमारे जीवन में ना हो। तो हमने अलौकिक जन्म लिया, हम ब्राह्मण बने। अब ब्राह्मण से फरिश्ता बनना, तो ब्राह्मण जीवन में क्या चेंज करना है जो फरिश्ता बने। फर्स्ट लेवल में मोटा परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन, सबकी मदद मिलती, देखने में भी आता कि भाई ये ब्राह्मण बने हैं, माना ये व्यसन नहीं है, फैशन नहीं है, पिक्चर होटल नहीं है, फलाना, माना हम दिखाई देता है। अब इंटरनल है, सूक्ष्म, कि हमें ब्राह्मण जीवन में क्या परिवर्तन करना है जो फरिश्ता बने। बेशक ऑलरेडी हमारा ब्राह्मण जीवन पवित्र है, योगी है, सेवाधारी हैं, सहयोगी हैं। माना हमारा ब्राह्मण जीवन ऑलरेडी महान है, दुनिया की तुलना में हम हंस हैं। तो ब्राह्मण जीवन में मुझे कहां क्या चेंज करना है, क्या रिफाइननेस लानी है, क्या क्वालिटी ऐड करना है जो हम फरिश्ता बने। इसलिए ब्राह्मण जीवन के हर तौर तरीके को चेक करना होगा। निश्चय पहली बात, निश्चय से ब्राह्मण जीवन शुरू होता है, तभी चेंज आता है, धारणाएं होती है। वरना कहीं रोज जाते हैं, सेवा करते हैं, सहयोग देते हैं, पर ब्राह्मण तो परिवर्तन करते हैं तब हम कहे जाते हैं ना। तो निश्चय, अपने निश्चय की क्वालिटी बाप समान बना। अपने बौद्धिक स्तर पर भी बाबा मम्मा दादियां निश्चय में अचल अडोल रहे, अपने आप में विचलित नहीं हुए कभी भी, सिर्फ निश्चय। धारणा की बात मैं नहीं कर रही, निश्चय। कई बार विवेक बदल जाता है, दिव्य बुद्धि बदल जाती है। पारिवारिक जीवन में जो बातें आती है उससे भी निश्चय अटूट रहे, स्वयं में, बाबा में, ड्रामा में, ईश्वरीय परिवार में, ज्ञान के हर सत्य में। समाज के विघ्न आए तो भी निश्चय बाबा मम्मा आदि रत्नों का नहीं हिला। नंबरवार ब्राह्मण परिवार के बीच भी नहीं बदला। हम नंबरवार है ना, हम ब्राह्मण आत्माओं की वैरायटी नंबरवार पुरुषार्थ है ना, ऊंचाई नीचाई में भी निश्चय अचल अडोल हर बात में। ज्यादा विस्तार में मैं नहीं जाऊंगी, आप खुद सोचना। और शारीरिक बीमारियां आई, आर्थिक समस्याएं, निश्चय नहीं हिले। मेरा निश्चय मुझे ऐसा बनाना है। निश्चय के बाद पढ़ाई, हम रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, क्लास में जाते हैं, सभी रोज योग करते हैं, रोज मुरली अध्ययन करते हैं, उस पढ़ाई की क्वालिटी को देख लीजिए, हमारी पढ़ाई कैसी है। मुरली क्लास में मेरा क्या है स्थिति, एकाग्रता, इंटरेस्ट, अटेंशन, पढ़ाई की क्वालिटी को चेक करना, वो बाप समान बनाना। क्योंकि पढ़ाई में जब अटेंटिव होते हैं तो वो आधा से ज्यादा बुद्धि में बैठ जाता है। उस समय अगर मैं फोकस नहीं हूं, अटेंटिव नहीं हूं, आलस आ रहा है, नींद आ रही, इधर उधर देख रही हूं, और विचार, कई बातें हैं ना डिस्टर्बेंस के, मुझे पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी कर दी बाबा जैसी कर। पुरुषार्थ, पढ़ाई के बाद होमवर्क, होमवर्क आता है, दिन भर का होमवर्क, वो पुरुषार्थ हम कहते हैं। आज जो बाबा ने कहा, आज का होमवर्क कैसा रहा। पढ़ाई तो हर एक को एक सरीख ही टीचर कराते हैं, नंबर तो वही लेता है ना जो होमवर्क अच्छा करता है, फॉलोअप अच्छा करता है। पुरुषार्थ, सारे दिन की दिनचर्या में पुरुषार्थ को इंक्लूड करना है ना, और तो टाइम है नहीं। जो नौकरी है करनी है, परिवार है वो पालना है, खाना है, नहाना है, सोना, वो तो सब करना है, उसमें पुरुषार्थ कहाँ तक ऐड कर सकते, और वो क्वालिटी। पुरुषार्थ के बाद लगन, लगन है तो पुरुषार्थ मेहनत नहीं लगेगा। लगन है तो बाबा कहते हैं ना विघ्न भस्म हो जाते, इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट आता है वो इजीली हम करते हैं ना। तो मेरी लगन बनी रहे, अंत तक लगन बनी रहे, आती है ऊपर नीचे आती है ना, कभी बहुत इंटरेस्ट, कभी नहीं, कभी क्या आता है, पर दृढ़ता से लगन को बना के रखें। वैराग्य को चेक करें, बाबा मम्मा का वैराग्य, साक्षात्कार मात्र से त्याग हुआ, बिना वैराग्य तो हुआ नहीं। हम दुखी होते हैं पर वैराग्य आता है, दोनों चीज चेक कर ली है। कई बार हम दुखी हो जाते हैं भाव स्वभाव संस्कार की बातों से, पर फिर भी वैराग्य नहीं आता है, उसी में लगे रहते हैं। वैराग्य माना बाबा कहता है लंगर उठ जाए। मुझे किनारे पर पहुंचना है। त्याग, एक धक से किया, निर्संकल्प होके किया, स्वेच्छा से किया, समय पर कर लिया, सोच सोच के करना, दूसरों को देख के दूसरों के कहने पर करना, टाइम लगना, तो क्वालिटी तो चेंज हुई ना, क्वालिटी करना, त्याग क्वालिटी। बाबा कहते हैं ना समय पर, यही समय है ना, यही समय है। भगवान आते हैं और कहते हैं, तब जो करते हैं, सारा महत्व तो इसका है ना। विभक्ति में मैंने बहुत उपवास किए, पर अभी क्या है, बात तो अभी की है ना। अब जब सन्मुख है तो मैं क्या कर रही, तो त्याग क्वालिटी, तपस्या, शक्तिशाली लाइट माइट वाली, बाबा कहते हैं सेवा। बाबा मम्मा कैसे सेवा कर, हम सेवा कैसे करते, सहयोग, बाबा जिम्मेवार थे, हम जिम्मेवार समझते हैं या सहयोगी हैं, अंतर है दोनों में। भाई 1000 का ब्रह्मा भोजन बनाना है, कौन कौन मदद करेंगे, तो हर कोई हाथ ऊपर करेगा। जवाबदारी कौन लेंगे, हाथ नीचे। दो चार ही जवाबदारी लेने की हिम्मत रखते। बाबा जवाबदार था, हम सहयोगी हैं या जिम्मेवार है, वो भी चेक करना। सहयोग हमारा किस प्रकार, समर्पण, ब्राह्मण जीवन की ये सारी चीजें, उसमें बाबा जैसी क्वालिटी, रिफाइननेस, दृढ़ता लानी है, अवश्य हम बाबा जैसे बन सके। ओम शांति। साढ़े सात तक हम अभ्यास करेंगे, 2 मिनट खड़े होना चाहे खड़े हो जाइए, थके नहीं। हाथ पांव स्ट्रेच कर ले, हाथ पांव खींचिए, स्ट्रेच करिए, कमर ठीक कर लीजिए। हाँ छोटे शरीर में बड़े कलाकार आए हैं। स्वागत है।
ओम शांति जी, मैं सर्वशक्तिमान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। मैं सफलता जन्म से अधिकार है। मैं आत्मा हूँ, आप सब भी आत्मा है। आपकी ड्रेस भी बहुत सुंदर है, आपकी ड्रेस भी बहुत सुंदर है। मैं बाबा की बच्ची हूँ, आप सब भी बाबा के बच्चे हैं। ओम शांति जी। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया के पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया के पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण। समर्पण सदा के संगीत सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी श्रीमत पे चलते रहेंगे, जो भी हम कहेंगे वो करके रहेंगे। दिल से दिलाराम, दिल से हम कहते दिलों जा से बाबा तुमको है अर्पण। अब तुम्हारे तुझे तेरा सब कुछ समर्पण। समर्पण नहीं पास में अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। किए तूने हम पर एहसान इतने, ये जीवन भी देख झुका ना सकेंगे। ये जीवन भी देखकर झुका ना सकेंगे। ये मैपन मेरापन, ये कक्षण ये जीवन, ये संकल्प हर बोले पन है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा प्यारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण। समर्पण जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ओम शांति।
तीन संकल्प हम पक्के करेंगे बाबा की याद में बैठ के। अपना राइट हैंड आगे करेंगे, स्वयं के लिए संकल्प। मन में मैं बता देती हूँ फिर, मुझे प्यारे बाप दादा समान, संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। स्वयं बाबा बना रहे हैं, मुझे भी बनना ही है। पूरा फॉलो करना है, पूरा वर्षा लेना है। मन ही मन प्यारे बाप दादा से, स्वयं के लक्ष्य के संकल्प को खुद रिवाइज करें। दूसरा संकल्प, सिर्फ शरीर से हिले, स्थिति में स्थिर रहे। हम लौकिक अलौकिक परिवार में कैसे चलेंगे और संकल्प दृढ़ करें, ये ईश्वरीय परिवार बाबा ने इसलिए दिया है हम मिलकर पुरुषार्थ कर संपूर्ण बने और विश्व सेवा का कार्य संपन्न करें। हम ईश्वरीय परिवार में पुरुषार्थ के हर कार्य में रूहानी सेवा की हर योजना में एक दो के सहयोगी बनकर चलेंगे। हम स्वयं हमारा सेंटर सब जोन जोन यज्ञ निर्विघ्न रहे, संस्कार मिलन की रास रचाएंगे। हाथ नीचे बाबा के सामने हो जाए। दूसरा संकल्प आप खुद बाबा को बताइए। ईश्वरीय परिवार में निमित्त आत्माओं के साथ सबके साथ आप कैसे चले, जैसे बाबा ने हम बच्चों को चलाया ऐसे ही हमें सबको चलाना है। तीसरा संकल्प संगठन के लिए, अपनी अपनी लाइन में पहले बहनों के साथ भाई भाइयों हाथ पकड़े चैन बनाए, एक दो का हाथ पकड़े नहीं हाथ पकड़ के ऊंचा। हम संगठित होकर श्रीमत पर एक मत बनेंगे। प्यारे बाप दादा का नाम रोशन कर, हम अपने चेहरे और चलन से अपने अस्तित्व से मन वचन कर्म से बाबा को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करें। बाबा के साथ तीसरा संकल्प रिवाइज करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने योग में रहकर कैसे अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाकर और पुरुषार्थ में हम आगे बढ़ें, दीदी ने बहुत सुंदर रीति से सभी को अनुभव कराया।